ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली है कर्मों की गुयगति। गीत भी उसी अनुसार बजा। कहा जाता है कर्म की गति बलवान है। गति माना उसका फल। कर्म की गति बलवान है लेकिन साधारण इंसान उस कर्म की गति को समझता नहीं है। इसलिए उसके मन में प्रश्न उठते, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो बाबा ने आज राज समझाया है कर्म की गति का। कर्म हमारा विकर्म कब बनता है? जब देह अभिमान के वश कोई न कोई विकार के वशीभूत हो जाते हैं। फिर उसका परिणाम क्या होता है वो भी बाबा बताते हैं। इसीलिए बाबा ने आज सावधान किया है, बच्चे कोई भी कर्म तुम्हारा विकर्म न बन जाए। क्योंकि ब्राह्मण बने तो विकर्म एक गुना नहीं, हाँ उसकी सजा एक गुना नहीं होती लेकिन 100 गुना सजा हो जाती है। क्योंकि ज्ञान है, समझ है, समझ के आधार से कर्म जरूर श्रेष्ठ होने चाहिए। वैसे भी बाबा कहते हैं दुनिया में भी ये लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई भी आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपको लेफ्ट साइड से गाड़ी चलानी, आप राइट साइड से गाड़ी चलाओ। आप कहेंगे मैं तो अमेरिका में रहता था, अमेरिका में तो राइट साइड से गाड़ी चलती है, तो मैं तो उसी का आदी हूं, तो भारत में भी मैं ऐसे ही करूंगा, तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेगी। आपको कोई अधिकार नहीं है यहां, क्योंकि आपने कानून को कानून का उल्लंघन किया। कहे मुझे तो पता ही नहीं था कि हम को लेफ्ट से चलाना है, तो भले न भी पता हो लेकिन आपको सजा मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जानबूझ करके भी अगर विकर्म करते हैं तो उसकी तो 100 गुना सजा है। तो सारी मुरली आज कर्म पर है। ये कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो बाबा कहते हैं अगर वो कर्म तो बहुत विकर्म हो गए हैं तो उनसे एक तो पुरुषार्थ से बचो, देही अभिमानी बनो, और जो विकर्म हुए हैं वो बाबा को सुनाओ, तो बाबा रहम करेंगे। परंतु फिर भी जो कर्म हुए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए योग बल से तुम उन कर्मों की सजा को कम कर सकते हो। तो आज बाबा ने बहुत सावधान किया है। सुनते हैं आज की मुरली। पवित्रता पर भी बाबा ने बहुत जोर दिया है। आज 7/12/2024 है। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। उल्टा कर्म होता है पर समझ आती नहीं, अभिमान के वश है, फिर कहते मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। कैसे गलत काम नहीं किया, ऐसे ही थोड़ी सजा मिलेगी। सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? कई उत्तर मिल सकते हैं लेकिन बाबा कहते हैं उत्तर है जिनमें पवित्रता की धारणा है। पवित्रता की धारणा, पवित्रता की धारणा में बहुत कुछ आ जाता है, केवल काम विकार की जीत नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट हाँ बहुत कुछ है ना, ये सब बाबा कहते हैं ये पवित्रता भंग होती है। तो जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। सबसे बुद्धिवान कौन? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। नहीं तो बाबा कई बार कहते वो तो रॉयल बुद्धू है, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान इस समय बनते हैं, जिसके कारण इतना ऊंच पद भविष्य में पाते हैं। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं। कितनी बार आज बाबा ने मुरली में सावधान किया है, इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे ये आंखें धोखा न दे, इनसे संभाल करना, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि पुरानी दुनिया को देखते, इनको है मेरे को क्यों नहीं, ये भी लूं। हाँ तो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो तो कोई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी, इसके लिए कोई गलत कर्म करना पड़े। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे ये तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में हमें अभी थोड़े दिन रहना है, हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है, तो तुम बच्चों को ये निश्चय है ना कि 40,000 वर्ष नहीं रहना इस कलयुगी दुनिया में, अभी थोड़े दिन के हम मेहमान है, ये हमें निश्चय है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं कि हम थोड़े दिन के मेहमान है, घर जाना है, ये भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए, बस थोड़े दिन है, अब गए कि गए, अब जाएंगे हम घर वापस, तो गदगद होना चाहिए अंदर में ये सोचकर। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है, हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सोफे पुरानी बनती है, पुरानी सोफे नई दुनिया कैसे होगी? अब नई थी पुरानी हो गई, तभी पुरानी से फिर नई दुनिया कैसे होती है? ये तुम्हारी बुद्धि में है, हम बना रहे हैं नई दुनिया, तो अब हमारी बुद्धि में है कैसे नई दुनिया बन रही है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। सत्युग में मनुष्य नहीं होंगे, देवताएं होंगे, सब देवताएं ही हैं, थोड़े हैं। बाकी कर्मों पर सारा मदार है, वहां स्टेटस क्या मिलेगा, पद क्या मिलेगा, वो अभी के कर्मों पर मदार है, बाकी है सब देवताएं वहां। बाकी कर्मों पर सारा मदार है, मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है ना, कोई भी गलत काम किया तो मन तो खाता है, बिल्कुल खाता है, अंदर ही अंदर डर लगता है कि किसी को पता चल गया तो सजा मिलेगी। हाँ तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है मन में, इसलिए बाप पूछते हैं। अब आए हैं बाबा के बच्चे बने हैं, वैसे भी अज्ञान काल में भी मन खाता अगर गलत कर्म करते हैं, तो जब बाबा के बनते तो बाबा पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं? ये है पतित छीछी रावण राज्य, ये धुंधकारी दुनिया है, धुंधकारी किसको कहेंगे, जो परेशान करते तंग करते ना बच्चे, कहते क्यों धुंधकारी बनी हो, क्यों इतना तंग कर रहे हो। ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। सब यहाँ जो भी होंगे सब भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर यहाँ आए हैं। हाँ, किसी ने जन्म में भक्ति नहीं की होगी, लेकिन पिछले जन्मों में तो बहुत की होगी ना, तभी तो बाबा का ज्ञान मिला। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। अब कोई सहारा ही नहीं था, भगवान को पहचानते ही नहीं थे, तो विषय वैतरणी नदी में हम गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सत्युगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? हाँ, बाबा पूछते हैं कौन बनाते हैं पतित छीछी से गुलगुल और कांटों से फूल, कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप तो नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है। हाँ, पता चलता है ना, तीनों युगों का, तीनों कालों का संगम पर ही पता चलता है। तो बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, तो बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो क्रिएटर डायरेक्टर है, तो दामा चल रहा है तो बीच में नहीं आता है डायरेक्टर। और लास्ट में जब सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होने पर होता है, तब लास्ट में सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, डायरेक्टर सहित सब इकट्ठे आ जाते हैं। तो डायरेक्टर कब आएगा? अंत में। तो क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। क्रिएटर डायरेक्टर है तो जरूर उसने कुछ किया होगा ना उस ड्रामा के लिए, तो कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता है, परमात्मा को आदमी नहीं कहेंगे, मनुष्य तो आदमी है ना, ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मनुष्य तो आदमी है, परमात्मा वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना, आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो अपना शरीर ही नहीं है, शरीर हो तब आदमी कहा जाए, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता कहेंगे न मनुष्य कहेंगे, वो तो परमात्मा है। ये तो टेम्पररी शरीर लोन पर लिया हुआ है, ब्रह्मात्म टेम्पररी शरीर लोन पर लिया शिव बाबा ने, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगड़ में राजयोग कैसे सिखाऊंगा, हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं भगवान के लिए, कि वो ठिक्कर भीतर में है, ठिक्कर भीतर में परमात्मा है। परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ, मैं ठिक्कर भीतर में नहीं हूँ, मैं आता हूँ। आता हूँ माना पहले से नहीं हूँ ना, पहले से होऊंगा तो आऊंगा कहाँ कैसे। तो तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं, हाँ बाबा कहते हैं देवताएं तो सीख न सके, देवताएं न सीखते हैं न सिखा सकते हैं। हाँ, देवताएं राजयोग, यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर तुम देवता बनते हो। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, इस बात की खुशी, बहुत बातें हैं जिससे जिसको सोचकर खुशी आती है। तो बाबा कहे हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है, ये सोचकर खुशी आनी चाहिए। बाप कल्प कल्प आते हैं, बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस था, वही से 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर आती है 84 के चक्र में, शिव बाबा की आत्मा नहीं आती है। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है, ये बातें किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी मंगलवारी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर से फिर श्याम बनती है, फिर सुंदर बनती। बाबा कहते ये तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवारी जानते हैं। हर बात में बाबा नंबरवार शब्द जरूर कहते हैं, तो तुम्हारे में भी नंबरवारी ये बातें जानते हैं। क्यों नंबरवार है? क्योंकि माया बहुत कड़ी है, किसी की बुद्धि को फिराने में देर नहीं करती माया। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, सबके अंदर बैठा है और उसको मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाप को सब मालूम पड़ता है, माया ग्रह एकदम हप कर लेती है। मगरमच्छ जैसे हप कर लेता है, तो माया भी मगरमच्छ की तरह सब हप कर लेती है, एकदम खत्म कर देती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, पर ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, अंदर बैठा है और इसलिए सब जान रहा है। नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। मगरमच्छ के अंदर अगर मनुष्य चला गया तो वो तो कच्चा ही चला गया ना, तो अंदर ही अंदर उसका पेट इतना मजबूत होगा जो अंदर ही अंदर उसको खा जाता है। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है, ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती है। कैसे बच्चों को माया ने अजगर कहो या क्या कहेंगे, मगरमच्छ कहो, ग्रह कहो, उसको माया कैसे कच्चा खा जाती। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पता भी नहीं चलता होगा। तो ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ती है कि कैसे माया ने किसको खा लिया। बाप को तो सब मालूम पड़ता है, मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है, अंतर में बैठकर सब जान रहा है क्या क्या सोच रहे हैं। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना, बहुत ही छीछी चलन चलते हैं, इसीलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, सावधान करते हैं, माया से संभालना है। कि भाई बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है, अब माया से अपने आप को संभालना है, बच के रहना है, सावधान रहना, बाबा हर मुरली में समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि काम महाशत्रु है, मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है विकार में गए और फिर यहाँ आकर बैठते हैं क्लास में, सेंटरों पर तो कुछ पता ही नहीं चलता है, वो तो घरों में रहते हैं, वो क्या विकारी बने क्या बने और आके यहाँ बैठ गए क्लास में, तो मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए। ऐसे भी होता है, इसीलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? ये हमारी दुनिया है ही नहीं, ये तो रावण की दुनिया है, जो हमारी दुनिया है ही नहीं, हम उसको याद क्यों करें। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाता है तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए नया मकान बन रहा है। होंगे पुराने मकान में, लेकिन उनका उनके लिए नया मकान बन रहा है तो बुद्धि तो सारा दिन नए मकान में होगी। तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है ना। ये तो बेहद की बात है, ये बेहद की खुशी हो कि बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, होती है खुशी। हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग बना रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। कैसे जाएंगे उस नई दुनिया में, इस हालत में तो नहीं जाएंगे। अभी तो बहुत पापों का बोझा है सिर पर, अभी तो कहाँ पूरे निर्विकारी भी बने, कहाँ पूरी याद है, मन भटकता रहता है। तो बाबा कहते हैं, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। अगर याद है ही नहीं तो गुलगुल भी कैसे बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं, हाँ बाबा के बने रोज मुरली सुनते रहे, लेकिन अचानक आना बंद कर दिया। मान लो सेंटरों पर तो बहुत होता है ना, तो अचानक आना बंद कर दिया, तो जो वो नहीं आते हैं तो क्या समझना चाहिए, ये माया के वश हो गया है। फिर बाबा कहते थे उनको सुजाग करो उनको। हाँ कई टीचर्स हमारी बहुत ध्यान देती है, तो नहीं आता है तो फोन करती है, क्या बात है भाई आजकल आप आते नहीं हो। तो वो तो सौ बहाने देंगे, ये काम वो काम वो काम, लेकिन जरूर कुछ डाल निकाला है, हाँ कुछ तो गलत गलती की होगी, इसीलिए मन खाता है तो फिर थोड़ा सोचते कैसे जाएं। तो बाबा कहते हैं, हाँ तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास है ही नहीं वो, हाँ रजिस्टर से नाम हट गया, बाप के पास है ही नहीं, टेटर बन गए। चलो नहीं आते तो शांत बैठो ना घर में, फिर टेटर भी बन जाते हैं, कहते मैं क्यों नहीं जाता हूँ, ये भी पता नहीं क्या क्या कर बोलते रहते हैं, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, ये देखा, ये कमी वो कमी। अरे भाई तुमको नहीं आना है तो बस चुप बैठ जाओ, नहीं आना है तो। लेकिन टेटर क्यों बनते हो दुनिया में जाके, फिर बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे, हाँ फिर ट्रेटर भी बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए हैं, वो विकारों के वश हो गए हैं, माना पुराने दुश्मन के पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, हाँ ये सेवा करेंगे वो करेंगे, सेंटर बनाएंगे, हाँ न जाने क्या क्या वायदे करते हैं, कितनी बातें कहते हैं ये करेंगे, और इतने तक कह देते हैं क्या, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, ऐसे भी कहते हैं। आज वो है नहीं, माया हप कर गई उनको। हाँ कई तो बाबा कहते हैं ना कि ब्लड से भी निकल देते थे, हाँ बाबा मैं आपके सिवा और कोई नहीं, मैं आपका ही हूँ, आप पर ही वारी जा रहा हूँ, माना बाबा बाबा बस बाबा। और फिर वो बाबा कहते अपना खून खून से भी ऐसे वो तो काट करके उसमें से वो डुबो करके फिर लिखते हैं। ऐसे भी बहुत निकले, बहुत शुरू में तो बहुत निकले। तो बाबा कहते हैं हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। वो क्रोध आया तो कर लिया, ये थोड़ी कि क्रोध मुझे नहीं करना है, परंतु आ गया तो कर लिया, तो क्रोध तो आएगा ना, सीधा कह देते क्रोध तो आएगा, लोभ तो होना ही चाहिए, मोह तो होगा ही, अहंकार कैसे नहीं आएगा, दुनिया में कैसे रहेंगे। तो बाबा के जन को पता ही नहीं कि माया से लड़ाई भी होती है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई भी दिखाते हैं, वो भी हुई। अब कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है, देवताओं और असुरों की लड़ाई कैसे लगेगी। देवताएं तो सत्ययुग में स्वर्ग में और असुर तो कलयुग में, मिलेंगे कब जो लड़ाई करेंगे। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है, देवताएं तो अहिंसक होते हैं, अब अहिंसा परमो धर्म और फिर लड़ाई करें। चलो श्री कृष्ण के लिए भी कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, और वो फिर कहेगा कि लड़ाई करो, पांडवों को कहेगा लड़ो, कौरवों से धर्म युद्ध है। तो बाबा कहते हैं देवताएं कैसे, वो तो अहिंसक होते हैं, वो होते ही हैं सतयुग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। अगर देवताओं को असुरों से लड़ना है तो कैसे कहाँ लड़ेंगे, क्या देवताएं कलयुग में आकर के असुरों से लड़ेंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, अब साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं भक्ति मार्ग में। और फिर जैसे बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे बाबा में परिवर्तन आया, तो बाबा बताते हैं बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, जब ये ज्ञान मिला, बाबा को ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है, श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। बताया ना कि क्योंकि बाबा के पास आते थे, बाबा रोज सुबह नहा धो के सब घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी आते थे और बाबा उनको गीता सुनाते थे, अब वो तो उनका सिलसिला चलता ही था। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने गीता उठाई, लेकिन गीता उठाई परंतु खोलने से पहले शिव बाबा उनके द्वारा बोलने लगे। नहीं तो बाबा ने देखा कि इतनी आत्माएं आ रही है, तो बाबा बताते थे कि बाबा ने गोरखपुर में गीता प्रेस है, वो जबरदस्त है, मैं देख कर आई गई हूँ गोरखपुर, तो वहां पर वो गीता प्रेस है, बहुत गीताएं छपती है, इतनी टिप्पणियां छपती है और वहां से सारे विश्व को भी सप्लाई होती है गीता। तो बाबा ने वहां से 500 गीताएं मंगाई, क्योंकि बढ़ रहे हैं सत्संग, बढ़ रहा है तो सबको बांटेंगे, तो सबको दिया गीता। और जैसे बाबा गीता उठाई और पढ़ने लगे और शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और शिव बाबा बोलने लगे, तब बाबा को समझ में आया ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई और शक्ति बोल रही है, तब शिव बाबा का ज्ञान नहीं था, ये तो बाद में समझा। तो बाबा कहते हैं जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है, श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था। बाबा अभी शिव बाबा कहते इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया, ये तो गीता ही वो किताब ही छोड़ दिया और शिव बाबा ज्ञान देने लगे। तो इन तो बाप इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है, आत्मा को ही सोजरा होता है ना, अंधियारा रोशनी ये आत्मा की बात है, आत्मा के लिए है, आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते हैं सोजरे में कैसे आएंगे, तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तो तुम याद करते थे, कितना भक्ति में याद किया, तो भक्ति में तो तुम याद करते थे, कहते भी थे, या कहा किसी ने क्या कहते थे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। चलो कहते तो थे भक्ति में, परंतु वो कैसे आएंगे, आएंगे पर कैसे आएंगे, फिर हम बलियार बलियार जाएंगे तो कैसे बलियार जाएंगे, कुछ भी बाबा कहते समझते थोड़ी थे, बस ऐसे ही कहते थे आप आएंगे तो हम बलियार जाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है, ज्योति बिंदु, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, तुम खुद कहते हो, क्या कहते हो, ये तो वही हमारा बाबा है, वही हमारा शिव बाबा है जो कल्प पहले आए थे और हमें पढ़ाया था, ये वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनता है, कल्प कल्प भगवान हमारा बाप बनता है। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। चलो बाबा बाबा कहते हैं, हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा कहेंगे हाँ बच्चे बच्चे, तो बाप और बच्चे का संबंध हो गया, लेकिन वो हमारा टीचर भी है, तो फिर बाबा कहते उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुन सुनकर गदगद होना चाहिए, बाबा की मुरली सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बनी तो वो खुशी आएगी नहीं, भल कितना भी माथा मारे। अब छीछी बन करके बैठा मुरली क्लास में तो कितना भी माथा मारे वो फिर हमारे जाति भाई नहीं है। जाति का बहुत ध्यान रहता है ना दुनिया में, तो खास करके भारत में तो बहुत ही है, तो जाति का ध्यान है। तो बाबा कहते हैं भल कितना माथा मारे वो फिर हमारे जाति भाई नहीं है, उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, अलग अलग जाति अलग अलग उनके सरनेम, ये वो सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, हमारा सरनेम क्या है, हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ना, ब्रह्मा की संतान है। फिर ब्रह्मा तो हमारे लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, तो बच्चे भी बनते हैं डायरेक्ट, और आदि पिता है तो 84 जन्म लिए हैं, तो फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो गया। तो बड़े पे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। जब भी ब्रह्मा को दिखाते तो कैसे दिखाते, बादलों के बीच में कमल के फूल पर चार मुखधारी और उनके हाथ में शास्त्र। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे। चलो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है लेकिन वहां से अडॉप्ट कैसे करेंगे, बच्चों को अपना कैसे बनाएंगे, यहाँ साकार में होंगे तभी तो अडॉप्ट करेंगे ना, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है, ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का एपिसोड है, ये गीता का युग है, संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग, ये गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये भी किसको पता नहीं है, थोड़ी समझते कैसे हमको पावन बनना है, पर हम जानते हैं कि उसके लिए देही अभिमानी बनना पड़े, विकारों को जीतना पड़े तब पतित से पावन बनेंगे। पति से पावन कैसे बनना ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे, पति से पावन बनने की जो युक्ति बाबा बताते हैं वो साधु संत ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, ये तो भगवान ही कहेंगे ना कि देह से देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो, इसी से ही हम पावन बनेंगे। तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, ये भगवान ही कह सकता है, वो तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है कि इन साधुओं आदि का भी आकर मैं उद्धार करता हूँ, परित्राण साधु नाम है ना, तो इसलिए मैं ही आकर के साधुओं का उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे बीच में भी आई हो कभी भी आई हो, सभी का ये अंतिम जन्म है, सभी का ये अंतिम जन्म है। इसका भी ये अंतिम जन्म है, ब्रह्मा बाबा का भी अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है, वही पहला जन्म वाला श्री कृष्ण की आत्मा, वही फिर अंतिम जन्म में ब्रह्मा बना है। छोटे पन में गांवड़े का छोरा तो ये था ना, अब श्री कृष्ण को गांव का छोरा दिखाते, गांव में जाता था गैया लेकर, गैया चराने जाता था, बाबा कहते ये था गांवड़े का छोरा, गांव में रहता था बचपन में। तो छोटे पन में गांवड़े का छोरा था ना, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। सारे विश्व पर राज्य करना ये कोई कम बात थोड़ी है, तो कितने बुद्धिमान होंगे जो सारे विश्व पर इनका राज्य था। तो ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। बुद्धिहीन तो पतित को कहा जाता है, मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं बाबा माया ने हमें गिरा दिया, चलो सच तो लिखते हैं बाबा को, बाबा माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई, ये लिखते हैं बाबा को। तो बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना, तो तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे ना, पतित से पावन हमें बनना है, तो हमें बाबा को याद करना है, बाबा तो योग नहीं लगाएंगे ना, बाबा तो है ही सदा पावन। तुमने ही मांगनी की है भगवान से, क्या मांगनी की, कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे कहने पर आया हूँ मैं, भगवान हमारे कहने पर आए हैं, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भाव, सबसे सहज रास्ता मन मना भाव, भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। अब ये किसने का मन मना भाव, श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो श्री कृष्ण को सब याद करते हैं, पर ये भगवान ने कहा, और यही कहा मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। अब श्री कृष्ण को याद करने से थोड़ी सब पाप नष्ट होंगे, केवल एक शिव बाबा को याद करने से ही सब पाप नष्ट होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकेंड नंबर, शिव बाबा नंबर वन, फिर उसके बाद श्री कृष्ण। तो बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकेंड, वो परम धाम का मालिक, वो वैकुंठ का मालिक। नंबर वन जो है वो परम धाम का मालिक, और नंबर टू जो है श्री कृष्ण वो स्वर्ग का मालिक। तो स्वर्ग में तो नंबर वन कहेंगे ना, परम धाम में नंबर वन फिर शिव बाबा है, पर स्वर्ग में नंबर वन श्री कृष्ण, पर शिव बाबा के बाद, इसलिए सेकंड का। वो है वैकुंठ का मालिक, सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, अब कहीं पाठ तो ऐसे चलता नहीं, सभी में नंबर वन है श्री कृष्ण इस सृष्टि पर, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। नंबर वन प्रिंस है, सारे विश्व का प्रथम राजकुमार है, इसीलिए सब उसको प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सकते, कौन देखेंगे श्री कृष्ण को सचमुच जो फर्स्ट जन्म में आएंगे, श्री कृष्ण के समय आएंगे, वही श्री कृष्ण को पहले जन्म का रूप देख सकेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सके, तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी यानी जिगरी खुशी होनी चाहिए। उस दिन भी बाबा ने कहा न सब भले सत्युग में होंगे पर अगर प्रजा में दूर के हैं तो वो श्री कृष्ण का मुखड़ा वहां नहीं देख सकेंगे, क्योंकि स्वर्ग में जो राजधानी में होंगे जिसमें वो रॉयल फैमिली के होंगे परिवार के होंगे वही तो श्री कृष्ण को देखेंगे ना, सब कैसे देख सकेंगे जो दूर के होंगे। तो इसीलिए कौन देख सकेंगे श्री कृष्ण को जो बिल्कुल इस समय बाबा के बहुत नजदीक होंगे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सके, तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र रहते ही नहीं है, तो बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो, क्यों आते हो? अगर तुम निर्विकारी नहीं बन सकते हैं पवित्र नहीं बन सकते हो तो बाबा के पास आते क्यों? हाँ सेंटर पर भी बहने होती है ना, वो कहते हैं मैं नहीं पावन पर मैं नहीं पवित्र रह सकता हूँ, तो टीचर्स उनको कहते फिर आते क्यों हो? तो वो फिर क्या जवाब देते हैं? तो कहते हैं फिर क्या कहते हैं क्या करूँ रह भी नहीं सकता हूँ, बाबा की मुरली के सिवा मैं रह भी नहीं सकता हूँ, परंतु यहाँ आता हूँ शायद कभी तीर लग जाए, मुरली सुनते सुनते कभी तीर लग जाए इसीलिए आता हूँ। आप बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा, ये भी समझते हैं ये भी कहते हैं और आते भी रहते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं निर्विकारी नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी वो लोग क्या कहते हैं आप बिगड़ बाबा हमारी सदगति कौन करेगा, इसीलिए आकर के बैठ जाता हूँ क्लास में। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है कि भगवान के सिवा ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं ये भी निश्चय है, परंतु क्या करें फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। फिर कहते चलो सच तो बोल रहा हूँ, कही तो सच भी नहीं बोलते, मैं सच तो बोल रहा हूँ उसको उसका अभिमान होता मैं सच तो बोल रहा हूँ शायद सुधर जाऊं आऊंगा, तो सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा हमको ये निश्चय है। फिर और क्या बोलते बाबा को, बाबा हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमको सुधरना है, आपके पास आऊंगा तभी मैं सुधरूंगा और कहीं जाऊंगा तो नहीं सुधरूंगा, तो आपके पास ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर फिर नफरत थोड़ी आती है, बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसा होगा अगले कल्प में भी ऐसा होगा, नथिंग न्यू, बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं इसमें कोई अमल में नहीं भी लाते हैं, अब इसमें बाबा क्या कर सकता है? अमल में जो लाते हैं वो तो ऊंचा पद पाएंगे, नहीं लाते अमल में नहीं लाते प्रैक्टिकल जीवन में तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहेंगे क्या, बाबा कहेंगे फिर शायद उनका पाठ ही ऐसा है, कई बार होता है तो उनको कितना भी समझा वो समझता नहीं है, अब हम कहेंगे ठीक है जाओ तुमको जो चाहिए करो, हाँ समझता तो है नहीं तो हम थोड़ी कोई और बड़ा एक्शन लेकर के उनके लिए कुछ और बड़ा करेंगे, ठीक है हाँ फिर मेरे पास फिर नहीं आना। इसमें बाबा क्या कर सकता है, बाबा कहे शायद उनका पार्ट ही ऐसा है, सब तो राजा रानियां नहीं बनेंगे, राजे रानियां सब तो बनेंगे नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे राजधानी में सब चाहिए, इसीलिए बाबा कुछ कहीं छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे, तो फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, हिम्मत नहीं छोड़ो आगे जा सकते हो, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे कई रास्ते हैं, तो इसीलिए हिम्मत नहीं छोड़ो आगे जा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो इसकी संभाल करनी है। दूसरा सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। है ना, सबको निश्चय है बाबा का हाथ पकड़ा है तो हम इस विषय वैतरणी नदी को पार कर लेंगे। वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। नेगेटिव की तो बहुत ही फास्ट होती है, व्यर्थ की चलो थोड़ा उससे कम, लेकिन नेगेटिव की तो बहुत फास्ट। तो दोनों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, बहुत माल उनको लेके जाना चढ़ाई पर पहाड़ पर, तो ब्रेक तो बहुत पावरफुल चाहिए, नहीं तो कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। तो आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। बहुत सामान होता है ना ट्रक में, तो वैसे भी फास्ट चल सकते हैं, वो धीरे धीरे भी चलते हैं कि कभी भी ब्रेक लगानी पड़े। तो इसीलिए आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब क्या होगा, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। सच्चे कर्म योगी किसको कहेंगे, जो स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 7 तारीख है। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिनों के निमित्त बनेंगे उन्होंने भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही सब सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, कल से आप अच्छा आंगन में गरम गरम भुट्टा मिल रहा है तो वहाँ तो टोली वही है या यहाँ से टोली, टोली तो मिलेगी शायद। आंगन में गरम गरम भुट्टा मिल रहा है और दूसरा कल से तो आपने सुना होगा व्हाट्सएप में भी आ गया है, पटना सिटी की चंद्रा बहन, चंद्रा दादी उसको कहते थे क्योंकि बहुत बुजुर्ग बहन थी, उसने साकार बाबा मम्मा की पालना ली और पटना सिटी सेंटर पर रहती थी। बहुत बुजुर्ग थी, 86 इयर्स की थी, बहुत ही हिम्मत वाली थी, मधुबन आती रहती थी और उनके स्टूडेंट्स भी बहुत थे, उनको बहुत संभालते थे, अकेली रहती थी पर स्टूडेंट्स उनको बहुत साथ देते थे। मधुबन में कई बार आई, मेरे से भी अच्छा संपर्क था। लौकिक में हमारी लौकिक माता जी की वो सहेली थी, एक ही बिल्डिंग में रहते थे बॉम्बे में, और गीता पाठशाला थी हमारे उसी बिल्डिंग में, तो वो अपने घर में रहती थी, दो बेटियां, उसका पति बहुत अच्छी पोस्ट पर था। लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिला धक से, बस एक बाबा दूसरा ना कोई, फिर तो इतनी निश्चय बुद्धि बन गई, तो इसलिए मेरे से तो उनका मिलना होता ही था। तो पटना सिटी में उनको बाबा ने भेजा, साकार बाबा ने, और वहां ही सेवा की उसने। तो कल उसने शरीर छोड़ा, बहुत बुजुर्ग थी, लेकिन किसी ने मेरे से पूछा, वो यज्ञ की दादी थी, यज्ञ की नहीं थी, वो बाद में आई 1958 में, मुझे याद है। और हमारी लौकिक माता जी और ये दोनों सहेलियां थी, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो इसीलिए, और हमारे से भी बहुत प्यार था, तो उन्होंने कल शरीर छोड़ा। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उस आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। डबल फॉरेनर्स प्लीज स्टे बैक आफ्टर क्लास।